नमस्ते। आज हम लोग सावित्री में बुक 8, जिसमें एक ही कैंटो है, जिसका नाम है कैंटो 3, इसका नंबर है कैंटो 3, उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। अब पहले ये बात स्पष्ट हो जाए कि श्री अरविंद ने बुक 8 में केवल एक ही कैंटो और कैंटो 3 कैसे नाम दिया है। तो इसकी कहानी इस तरह से जुड़ी है कि अगर इस कैंटो 3 को हम देखें तो ये बुक 1 कैंटो 1 कैंटो 2 से जुड़ता है। अगर आप सावित्री को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बुक 1 कैंटो 1 में बैकग्राउंड का डिस्क्रिप्शन है और सावित्री उठती हैं। बुक 1 कैंटो 2 में कि सावित्री उठ करके विचार करती हैं कि ये दिन जो आने वाला है, उस दिन उनके भाग्य का एक निर्णय होने वाला है, एक भाग्य के साथ मृत्यु के साथ उनको लोहा लेना है, डिवाइन मदर उनके अंदर जागृत होती हैं। उसके बाद कैंटो 3 में अचानक पूरा कथानक बदलता है। सावित्री का जन्म कैसे हुआ, ये कहानी प्रारंभ हो जाती है। ए वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ, की एक सावित्री का जन्म संसार के एक पीड़ा, एक अभीप्सा, संसार चाहता था कभी जगन माता का अवतरण हो। तो अब वहां से वो एक लाइन से कहानी कनेक्ट हो जाती है अश्वपति और उनकी तपस्या से। लेकिन अगर हम अब ये कहानी जो चलती है अश्वपति की तपस्या से, ये जुड़ती कहां है, ये यहां जुड़ती है बुकेट में। कैसे जुड़ती है, हम देखते हैं कि अश्वपति तपस्या करते हैं, तपस्या उनकी इसीलिए कि इस संसार का कल्याण हो। वो अनेकों लोगों से गुजरते हुए जाते हैं, जगन माता से उनका दर्शन होता है, वरदान प्राप्त करते हैं, जगन माता का अवतरण होता है, बड़ी होती हैं, फिर जब एक समय आता है, उपयुक्त समय, विकास होता है उनका, एक उपयुक्त समय आता है तो अशुपति कहते हैं कि तुम जाके अपने पार्टनर को ढूंढो, तो ढूंढने निकलती हैं। फिर सत्यवान मिलते हैं, सत्यवान के साथ उनका विवाह निश्चित हो गया है, और विवाह निश्चित होने के बाद नारद आते हैं और नारद कहते हैं कि 1 वर्ष दिया गया है सत्यवान और तुम्हें, और वो निर्णय लेती है कि नहीं, ये 1 वर्ष ही मेरा जीवन है। उसके बाद हम देखते हैं कि सावित्री उस 1 वर्ष को अनंतता तक ले जाने के लिए वो उसको योग तप में बदल देती हैं। तो वो बुक ऑफ योगा हम लोगों ने पढ़ी। अब लेकिन कहानी कहाँ छूटी थी, बुक 1 कैंटो 2 में छूटी थी, जब जगन माता उठती हैं। तो अब उठने के बाद क्या हुआ, अब ये बुक 8 में कनेक्ट होती है। तो कैंटो 3 बुक 8 का संभवतः श्री अरविंद बुक 1 कैंटो 1 कैंटो 2 कैंटो 3 डेथ इन द फॉरेस्ट, इट लॉजिकली कनेक्ट्स। लेकिन उन्होंने डेथ इन द फॉरेस्ट लिखने के बाद अश्वपति का योग इतना एक्सपेंड किया है श्री अरविंद ने कि वो कैंटो 3 पुश होता होता बुक 8 में चला गया, लेकिन वहां उन्होंने कैंटो 3 छोड़ दिया। तो एक तरह से ये भूल नहीं है, भगवान से भूल नहीं होती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अब लोगों को ये स्पष्ट है कि अच्छा अब ये कहानियां कनेक्ट हो रही है। देखा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कहानियां कनेक्ट हो रही। तो अब ये बुक 1 कैंटो 2 के बाद कैंटो 3 से जो फ्लैशबैक है पूरा, वो अब यहां कनेक्ट होता है डेथ इन द फॉरेस्ट। सावित्री उठ गई है और उनको पता है नियति का यह दिन है जो भाग्य ने चुना है सत्यवान को ले जाने के लिए। अब वो कैसे इसको फेस करती हैं, अब ये उदाहरण है हम लोगों के लिए, जीवंत उदाहरण। एक और हम लोग ये एक्चुअली देखा जाए तो पूरी अभी हम लोग जिससे गुजर रहे हैं, आज किसी को पता चल जाए कि आज मेरी मृत्यु होने वाली, आज ही नहीं मुझे एक रोग हो गया जिससे मेरी संभावित 1% मृत्यु के चांसेस हैं, तो हम केस को पुकारते हैं। पहले तो सारे डॉक्टरों के नंबर रख लेते हैं, मिनिस्टर्स को, क्योंकि बेड मिले नहीं मिले, मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से आपको मिलेगा, जमा खर्चा, बैंक बैलेंस, इंश्योरेंस, ये सब हम लोग करते हैं। सावित्री क्या करती हैं, ये मनुष्य को करना चाहिए जो हम नहीं करते। सावित्री ने अपने आप को तप के द्वारा तैयार किया, ये भारतीय विचारधारा है। और ये इतनी अद्भुत है क्योंकि ये केवल एक बीमारी में काम नहीं आती है। एक बीमारी में आप हुए, आपने वैक्सीनेशन लगा ली, आप हॉस्पिटल गए, एक बीमारी से आप बच गए, फिर दूसरी बीमारी आएगी, दूसरी बीमारी से भी आप बच गए, तीसरी बीमारी आएगी। भारतीय चिंतन चीजों के मूल में जाकर मूल रूप से हल ढूंढता है, ये उसकी टेंडेंसी है, उसके रूट में जाएगा। बुद्ध यही तो है ना बुद्ध की समस्या कि आपके पास तो सब कुछ है, आपको क्या पड़ी है जाकर के जंगल में तपस्या करने की। तो बुद्ध क्या कहेंगे, बुद्ध कहेंगे मेरे पास राज्य है लेकिन योग नहीं है। अब शेरविंद से पूछेंगे आपके पास तो राज विभूति भी है, मतलब वो संसार में उस समय भी जिसके बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट कहे द मोस्ट डेंजरस मैन इन इंडिया, उनकी लेखनी का लोहा मान गए हैं सारे लोग, तो उनको तो राज संपदा भी है, साथ में उनके पास योग विभूति भी है। तो उनसे कोई पूछे आपको क्या समस्या है, आप क्यों जा रहे हैं पौंडिचेरी एकांतवास के लिए, तो कहेंगे मैं तो मेरी व्यक्तिगत कोई समस्या नहीं है, मैं तो संसार की समस्या का हल ढूंढने जा रहा हूं। तो संसार की समस्या का हल वो कैसे ढूंढते हैं, हम लोगों को हमेशा ऐसे समय पर जाना चाहिए भारतीय चिंतन में कि जब भी समस्या आई है, सावित्री की समस्या हो, द्रौपदी की समस्या हो, श्री राम और सीता की समस्या हो, आप कभी भी जाइए भारतीय चिंतन में विचारधारा में, समस्याएं बाहर होती हैं लेकिन भारतीय चिंतन कहता है हल अंदर होता है। और वो अंदर से कैसे आता है, समस्या आती है आपको इवॉल्व करने के लिए, आप इवॉल्व कर जाओ तो आपको समाधान मिलेगा, आप इवॉल्व नहीं करोगे तो वो समस्या रूप बदलेगी, नाम बदलेगी, आएगी, नाम बदल जाएगा, म्यूटेंट स्ट्रेन आ जाएगा, नई चीज आ जाएगी। तो अब जो स्वार्थी लोग हैं वो कहते हैं हमें इससे क्या, इस सबसे हमें क्या लेना देना, हम बच के निकल जाएं। यही मानसिकता ने मनुष्य को वह बना दिया है जहां वो आज खड़ा है। ये स्वार्थ की मानसिकता है कि मुझे इससे क्या लेना देना, हम बच जाएं, जान बची तो लाखों पाए, लोग कहते ना वो चाहे लाख पाके भी आप उसको एंजॉय नहीं कर पाए, इस ये चिंतन। लेकिन भारतीय मानसिकता, राजा परीक्षित की भी कहानी आप कहीं भी देख लीजिए कि ये चैलेंज आया हमें इवॉल्व करने के लिए। तो सावित्री ने वही किया जो हम सबको करना चाहिए, एक मार्गदर्शन किया हम सबका कि अगर हम इस जीवन को देखें तो इसमें अचित अंधकार अज्ञान यही सब भरा हुआ है, और खुशी मिलती है, सुख मिलता है, कितना क्षणिक होता है। यही नचिकेता का संवाद है, यही तो भारतीय चिंतन को अद्भुत बनाता है। नहीं तो अगर हमको वही सब चीजें करनी है जो वेस्टर्न देश में हो रहा है, हम भी एक नई खोज कर लें, तो शेरविंद ने कहा इफ वी गो डाउन दैट लाइन तो हम किसी भी एक हाईली मिलिटराइज्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड साइंटिफिक नेशन की तरह हो जाएंगे, और हमारा वही हश्र होगा जो जापान का हुआ कि उसने अपनी आत्मा को खो दिया, बाहर से समृद्ध हो गया। तो भारत की आत्मा क्या कहती है, नहीं हमें वो डिस्कवर करना है जो जब मृत्यु सामने खड़ी हो तो आपको वो ढूंढना है जो आपके अंदर अमर है, पहली चीज। सावित्री उसको ढूंढ लेती है, लेकिन सावित्री केवल अपने लिए ढूंढ लिया काफी नहीं है, तो वो अब उनको पूरी सृष्टि के लिए ये मनुष्य को तैयार करना है और देना है। तो हम लोगों ने बुक 7 में ये साधना देखी सावित्री की। अब कनेक्ट होती है बुक 1 कैंटो 2 से, सावित्री उठती हैं और उनको बाहर जाना है, उस दिन सत्यवान के साथ रहना है क्योंकि उनको पता है मृत्यु कभी भी आ सकती है। अब देखिए शेरविंद की अब क्या शब्द यूज करें, नजाकत, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। शेरविंद इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये भी एक पोइट की अद्भुत बात है। वो उस दिन उठती हैं, नित्य कर्म करके तैयार होती हैं, तो सास ससुर को एक क्षण के लिए भी नहीं बताती हैं कि पता है आज क्या होने वाला है। आपको मालूम है, आपने टीवी चैनल देखा है, कुछ नहीं कहती हैं। वो कहती हैं एक वर्ष हो गया मैं बाहर गई नहीं, मैंने ये देखा नहीं वन पूरी तरह, क्या आज मैं सत्यवान के साथ घूमने जा सकती हूँ, कहाँ घूमने जाएगी। बहुत सुंदर वर्णन है। तो उनके माता पिता कहते हैं अवश्य तुम जाओ, तो बहुत खुशी की बात है। इसके बाद का वर्णन भी बहुत सुंदर है, सत्यवान बड़ा प्रसन्न है सावित्री को साथ लेके। अब कंट्रास्ट करते हैं शेरविंद इसमें, बहुत जगह कहते हैं ना, जो पेंटर लोग जानते हैं इस बात को कि जब दो बिल्कुल विपरीत तरह की अवस्थाओं को मिलाया जाए, जैसे उस दिन जगदीश भाई की पेंटिंग फिनिक्स, फिनिक्स क्या है, एक और मृत्यु है दूसरी और नवजन्म है, दोनों चीजें एक साथ है फिनिक्स की स्टोरी में। तो उस प्रकार से जब आप कलर्स में मिलाते हैं ना चीजों को, दो बिल्कुल भिन्न रसों को, विपरीत रसों को, शेरविंद यहाँ पे वैसे मिलाते हैं, कई जगह मिलाते हैं सावित्री पुस्तक में, अपनी कई लेखनी में। तो यहां पर वो कहते हैं कि सत्यवान की अवस्था, अरे सावित्री साथ में आई है पहली बार में लेके आ रहा, तो वो क्या करता है, दिखा देखो यहां पे ना मैं घूमता था ऐसे, देखो यहां पे मैं छोटा था तो यहां वो देखो उस चिड़िया की आवाज सुनो, वो चिड़िया ऐसे कह रही है ना, चहचहा रही है, इसी को सुन करके मैं बड़ा हुआ हूं। देखो ये जलप्रपात को देखो, तो वो जगह जगह दिखा रहा है बड़ा खुश होता हुआ। और वहीं सावित्री के अंदर क्या चल रहा है, ये क्षण कहीं ये अंतिम क्षण ना हो, अब वो उस एक एक क्षण को सेवर कर रही है, अपने अंदर आत्मसात कर रही है। देखिए कंट्रास्ट देखिए, लेकिन वो एक क्षण को भी सत्यवान को भयभीत नहीं करती है। ये होता है आर्य भूमि की संतान, ना खुद भय खाती है ना किसी को भयभीत करती है। इस भाव से सावित्री जाती हैं और फिर वर्णन है कि सत्यवान पेड़ काट रहा है। आप देखिए शेरविंद कैसे संकेत लाते हैं तरह तरह के। तो सत्यवान जब पेड़ काट रहा है तो वो अपना कुल्हाड़ी से जब पेड़ काटता है अचानक उसको एक दर्द सा होता है। अब शेरविंद वहां डिस्क्राइब भी करते हैं कि ऐसा दर्द अगर कोई डॉक्टर पढ़ेगा तो कहेगा कि हार्ट अटैक का पेन है। सेटिंग भी आइडियल है, पेड़ पे वो कुल्हाड़ा उठा के काट रहा है, उसको लेफ्ट साइड में आर्म में पेन हो रहा है, क्लासिकल डिस्क्रिप्शन है। तो कहता है कि पता नहीं आज मुझे अजीब सा प्रतीत हो रहा है, लगता है कि पेड़ को जो मैंने कष्ट दिया था ना वो आज मुझे हो रहा है वो कष्ट। आप देखिए कनेक्ट कैसे करते हैं शेरविंद। फिर भी वो कुछ क्षण के लिए लगता है कि पेन चला गया, फिर वो काटने लगता है, फिर बहुत तीक्ष्ण पेन होता है, दर्द होता है। सत्यवान भूमि पर आ जाता है और भूमि पर आकर के इट इज सच ए ब्यूटिफुल नैरेटिव, छोटा सा कैंटो। वो सावित्री को कहता है कुछ क्षण के लिए तो मुझे बस अपने चारों तरफ अपने ही को मुझे घेर लो चारों तरफ से, शायद तुम्हारे स्पर्श से तुम्हारे घेरे से मेरे पास मृत्यु ना आ पाए। इस भाव से वो सावित्री की गोद में लेट जाता है और सावित्री चारों तरफ से, सावित्री तो जानती है, उनको लगता है कि अब इस क्षण, और अचानक कुछ देर में लास्ट जो मोमेंट है जब सत्यवान कहता है, अब यहां पर मोमेंट ऑफ डेथ, सावित्री में सब कुछ है, सत्यवान का लास्ट मोमेंट ऑफ डेथ बताते हैं। सत्यवान लास्ट मोमेंट ऑफ डेथ पे सावित्री को ही याद करता है, वो जगन माता है। अब ये कहते हैं ना कि इट इज हिज ग्रेट डेस्टिनी कि वो मृत्यु के समय जगन माता को याद करता है जो सावित्री के रूप में उनके पास है, और कहता है कि सावित्री सावित्री क्लास मी फॉर ए वाइल, विल रीड दैट डिस्क्रिप्शन, वी कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम देयर। जब सत्यवान भूमि पर आ जाते हैं और तब वो कहते हैं जस्ट फ्यू लाइन्स पेज 563 पर टुवर्ड द एंड, हर लाइफ वॉज नाउ इन सेकेंड्स नॉट इन अवर्स। क्यों? क्योंकि किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है। देखिए एट एवरी मोमेंट शी इकोनोमाइज लाइक ए पेल मर्चेंट लीन्ड अबव हिज स्टोर द माइजर ऑफ हिज पुअर रिमेनिंग गोल्ड। गोल्ड कौन है उनका? सत्यवान। तो जैसे एक मर्चेंट एक व्यापारी, मेरा सोने की गिन्नी कहीं चली ना जाए, तो इस प्रकार से सत्यवान को चारों तरफ से घेरे हुए हैं कि ये नहीं जाना चाहिए। बट सत्यवान वील्डेड ए जॉयस एक्स, सत्यवान तो बिजी था, ही सैंग हाई स्नैचेस ऑफ ए सेजेस चैंट दैट पील्ड ऑफ कॉन्कर डेथ एंड डेमन स्लेन। अब वो पूरा मूड ऐसा है, एक आर्टिस्ट की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि वो केवल वो चीज, कोई भी चीज जो होती है ना, ये आर्ट हमें सिखाती है, वो बैकग्राउंड के कंटेक्स्ट में आती है। इस सत्य को कई बार भूल गए हैं लोग। एक बड़ी सुंदर एक पेंटिंग की बात आई थी कि एक पिक्चर जिसको रिवार्ड दिया गया बेस्ट पिक्चर फॉर डिपिक्टिंग पीस, तो पिक्चर क्या थी, वो फोटोग्राफ था, फोटोग्राफ में दिखाया कि एक भयंकर बारिश हो रही है, थंडर हो रहा है, अब इसमें पीस कहाँ है। लेकिन उस फोटोग्राफ को आप क्लोज लुक में देखेंगे तो देखेंगे कि एक चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई है, शांति से बैठी हुई है। अब इस कंटेक्स्ट में दिस इज ए ब्यूटिफुल इमेज ऑफ पीस। अगर आप कंटेक्स्ट हटा देंगे पीछे से बैकग्राउंड की, ये थंडर हो रहा है, स्टॉर्म हो रहा है, लाइटनिंग हो रही है, देन दिस इज रूटीन, इट्स नॉट पीस। तो जो कंटेक्स्ट होता है आप देखिए, सत्यवान वहां गीत गा रहा है, क्या गीत गा रहा है, ऑफ कॉन कट डेथ एंड डेमन स्लेन, श्रद्धा है उसके अंदर, एंड समटाइम्स पॉज टू क्राई टू हर स्वीट स्पीच ऑफ लव एंड मॉकरी टेंडरर देन लव. अब ये देखिए शेरविंद को देख के भोले बाबा अनंतता में, आपने कभी ध्यान कीजिए, लव एंड मॉकरी, मॉकरी क्या है, ताना, लेकिन वो ताना क्या है, टेंडरर देन लव, प्रेम का ही एक हिस्सा है, टेंडरर देन लव. सो इस प्रकार से वर्णन करते हुए और फिर वो बताते हैं कि ये मेरे, मुझे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है. अब एक ग्रेट व्यक्ति की परीक्षा का, परीक्षा की घड़ी में उसका, उसकी ग्रेटनेस सामने आती है. वो जब सब ठीक है तो कोई भी बैठ के प्रवचन दे सकता है, पता है गीता में लिखा है ना जायतो मृत्यु ना सबको कंठस्थ है भारतवर्ष में, बहुत आसान है, राम समान प्रभु ना ही कहूं. अब वो लेकिन सामने जब खड़ा हो जाता है व्यक्ति तो डर के मारे, साहब जी आप रावण हो गए. लेकिन यहां मनुष्य की परीक्षा कब होती है, उसके सारे संकल्प की, धैर्य की, साहस की, श्रद्धा की, जब कठिन घड़ी आती है, वही आपको डिफ्रेंशिएट कर देती है कि ये मनुष्य इज ऑफ ए रियल मेक. हम लोग बाहर से देखते हैं, अरे ये आदमी ऐसा है वैसा है, ये भगवान ये सब ये सरफेस पर्सनैलिटी को नहीं देखते हैं, वो देखते कठिन घड़ी में वो व्यक्ति कैसे बिहेव करता है, वो एक परीक्षा की घड़ी. तो सावित्री के जीवन में एक कठिन घड़ी आई है. तो सावित्री का रिस्पॉन्स देखिए, जब वो कहता है, सावित्री ए पैंग क्लीव्स थ्रू माई हेड एंड ब्रेस्ट एज इफ द एक्स वेयर पियर्सिंग इट एंड नॉट द लिविंग ब्रांच. और ऐसा कहता हुआ, सच एगनी rends me as the tree must feel when it is sundered and must lose its life. A while let me lay my head upon thy lap and guard me with thy hands from evil fate. Perhaps because thou touchest, death may pass. अब ऐसे समय सावित्री की क्या रिस्पॉन्स, एक साधारण व्यक्ति, अरे क्या हुआ, क्या होने वाला है, चलो इसको बुलाएं, उसको, डॉक्टर को, ये करूं वो करूं, घबरा के, अच्छा क्या हो रहा है, ये भय का रिस्पॉन्स साधारण मनुष्य का. और जो सेम सिचुएशंस आती हैं, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति में अंतर क्या होता है, ये नहीं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज करने से बनता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति साधारण घटनाओं में एक्स्ट्राऑर्डिनरली व्यवहार करता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एटीट्यूड से फेस करता है. सेम उसके जीवन में भी सेम, अगर राम जी के जीवन में आप देखें, कृष्ण जी के जीवन में भी देखें, उस समय के हिसाब से मारपीट, ये राजा थ्रोन, दिस वाज नॉर्मल घटनाक्रम, लेकिन श्री कृष्ण कृष्ण है क्योंकि उनके, उन्होंने जिस तरह से इन चीजों को लिया, अगर केवल हम उनके जीवन को देखें, अद्भुत प्रेरणा मिलती है. तो यहां सावित्री का रिएक्शन देखिए. देन सावित्री सैट अंडर ब्रांचेस वाइड कूल ग्रीन अगेंस्ट द सन नॉट द हर्ट ट्री. अब देखिए छोटी सी बात में क्या कन्वे कर रहे हैं, जिस पेड़ को आप काट रहे हो उस पेड़ के अंदर से फॉर्मेशंस निकलती हैं. आप जब किसी ऑब्जेक्ट को मिस्ट्रीट करते हैं अपने घर में, व्यक्ति को मिस्ट्रीट करते हैं, इलविल थ्रो करते हैं, तो अब देखिए शेरविंद एक लाइन में क्या बता रहे हैं कि वो बैठती हैं एक ट्री के ग्रीन के नीचे, बट उस हर्ट ट्री के नीचे नहीं, क्योंकि वो तो खुश नहीं है कि मेरी ब्रांचेस को आप काट रहे हो तो अच्छी वाइब्रेशंस नहीं देगा, ऊर्जा नहीं देगा. बट लीन्ड विच इज कीन एक्स हैड क्लोवन दैट शी शंड. अब ये दो चीजें क्यों बोल रहे हैं शेरविंद, वो तो कह सकते हैं कि भाई उन्होंने पेड़ के छां के नीचे बैठ गई, यहां डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उसको सावित्री ने शन किया, यानी सचेतनता देखिए कि इसी वृक्ष के नीचे मैं नहीं बैठूंगी जिसको सत्यवान काट रहा था, उसको उन्होंने शन किया. लेकिन कहां बैठी, बट लीन्ड बीनीथ ए फॉर्चुनेट किंगली ट्रंक शी गार्डेड हिम इन हर बोसम एंड स्ट्रोव टू सूद हिज एंग्विश्ड ब्राउ एंड बॉडी विद हर हैंड्स. ऑल ग्रीफ एंड फियर वेर डेड विद इन हर नाउ एंड ए ग्रेट काम हैड फॉलन द विश टू लेसन हिज सफरिंग द इम्पल्स दैट अपोजेस पेन where the one mortal feeling left, it passed. So, अब ये हमारी response होनी चाहिए. जब कोई पीड़ा में है, कष्ट में है, हम लोग पीड़ा बढ़ाते हैं, कष्ट बढ़ाते हैं, क्या हो गया आपको? कोरोना हो गया. पहली बात पूछते हैं आपका ऑक्सीजन कितना है. अब उसने बोल दिया अगर मेरा ऑक्सीजन 95, ओ माय गॉड, आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया? क्या है, सूद करो उसको, व्यक्ति को, कुछ नहीं आप कर सकते. तो भय से हम बढ़ते चले जाते हैं. तो यहां पर सावित्री का ग्रीफलेस एंड स्ट्रांग शी वेटेड लाइक द गॉड्स, क्या लाइन है. एक एक लाइन श्री अरविंद की ना इज क्या कहा जाए, आनंद. जैसे वो इलियन में लाइन है ना, वो बूढ़ा सा आदमी जा रहा है कांपते हाथों से एचलिस का पैगाम लेके जा रहा है राजा प्रायम के पास कि अपनी बेटी को मुझे से विवाह करा दो, मैं तुम्हारी तरफ खड़ा हो जाऊंगा, किसी की मजाल नहीं है जो आंख उठा के देखे. और नहीं करोगे तो तुम जानते हो मैं अकेले ही काफी हूं तुमको ध्वस्त करने के लिए, एचलिस का पैगाम है. तो वो लेके जा रहा है उसका रति बूढ़ा हो गया. शेदन पहले उसका वर्णन करते, बूढ़ा है, हाथ वाथ कांप रहे हैं. तो शेदन कहते हैं, ओल्ड एंड फ्रेल ही कैरीड द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन इन हिज ट्रेम्बलिंग हैंड्स. वो हाथ में पैगाम नहीं लेके जा रहा है, एक राज्य का भाग्य लेके जा रहा है. प्रायम मान जाता है कि मेरी बेटी का विवाह हम एचलिस से कर देंगे तो प्रायम वॉज सेफ, ट्रॉय वॉज सेफ, नोबडी वुड फाइट अगेंस्ट एचलिस. ये मतलब ही वॉज रिगार्डेड एज ए किलिंग मशीन. तो इस प्रकार की यहां पर भी आप देखिए, ग्रीफलेस एंड स्ट्रॉन्ग शी वेटेड लाइक द गॉड्स. फिर उसके बाद सत्यवान, सावित्री सावित्री ओ सावित्री, ही क्राइड आउट इन ए क्लिंगिंग लास्ट डिस्पेयर, सावित्री सावित्री ओ सावित्री, लीन डाउन माई सोल एंड किस मी वाइल आई डाई. And even as her pallid lips pressed his failed, losing last sweetness of response, his cheek pressed down her golden arm, she sought his mouth still with her living mouth, as if she could persuade his soul back with her kiss, then grew aware they were no more alone. Something had come there conscious, vast and dire. लगता है ये बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है ही, है बहुत अद्भुत वर्णन है. पर आपको पता है कि ये जब सावित्री लिखी गई है, इसके डिकेड्स के बाद साइंटिस्ट ने एक नई चीज डिस्कवर की जिसका नाम वो कहते हैं किस ऑफ लाइफ. व्हाट इज द किस ऑफ लाइफ? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या दिया जाता है? माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन. इट्स लिटरली डन लाइक दैट, ना ए बी सी का वो होता है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, तीन चीजों का ध्यान रखा है. इस पर मेरी क्लास नहीं लेनी है अभी, पर आप हार्ट बीट को चलाते हैं और किस ऑफ लाइफ. नाउ दिस किस ऑफ लाइफ ब्रिंग्स बैक लाइफ इन द पर्सन. इट्स नॉट किस यू एक्चुअली ब्रिंग इन द थ्रू द एयर. बट लुक हाउ श्री अरविंद बहुत इंट्यूटिवली इस सत्य को बता रहे हैं. किस ऑफ लाइफ कैन सेव, और वो प्रयास करती कि सत्यवान आ जाए, लेकिन वो तो एक ग्रेटर पर्पस से, उनको तो मृत्यु की गुफा में जाना है. तो सडनली शी बिकम्स अवेयर कि सत्यवान इज नो मोर, कोई उनके बीच में आ गया है. अब यहां वो मृत्यु का वर्णन करती है. नियर हर शी फेल्ट ए साइलेंट शेड इमेंस, चिलिंग द नून विद डार्कनेस फॉर इट्स बैक. अक्सर लोग कहते हैं ना मृत्यु का समय, मृत्यु एक्चुअली वन कैन नो बाय द प्रेजेंस. जैसे भगवान का प्रेजेंस पीस लाता है अंदर, मृत्यु का प्रेजेंस एक चिल लाता है अंदर में. और यदि वो चिल नहीं है और किसी की मृत्यु हो रही, मतलब बहुत अच्छे ढंग से जा रहा है, वो देवताओं के सानिध्य में जा रहा है. इसका पता नहीं अनुभव किया हो नहीं किया हो, पर मैं 7 साल का था तब मैंने ये अनुभव किया था. एक बाजार से गुजर रहा था जहाँ चिकन को वो फेदर्स निकाल रहे थे, और उस समय वो मरती ना चिकन, तो वो चींक करती है, समाप्त हो जाती है. और पता नहीं वो गुजरते हुए मुझे, मैंने सुना नहीं, लेकिन एक ईरी सा साइलेंस लग रहा था कि जैसे कि क्या जगह है. तो मैं वहाँ गया देखने के लिए, और वो छी आवाज़, और मैंने जो देखा, तो दैट इज़ द मोमेंट आई न्यू कि दिस इज द प्रेजेंस ऑफ डेथ इन दिस एटमॉस्फेयर. और ये नहीं कि डेथ कोई आ रही है चिकन को लेने के लिए, वो वातावरण ऐसा, वातावरण ऑफ फियर एंग्विश. डेथ क्या है? माता जी क्या कहती हैं पता है? माता जी ने क्या कहा है फियर के बारे में? फियर इज द ग्रेट एलाई ऑफ फॉल्सहुड एंड डेथ. डेथ सीधा नहीं जाती है, पहले वो भय को भेजती है. आप देखिए दुर्गा जी की कहानी पढ़िए, जब राम जी की कहानी पढ़िए, सारी कहानियों में पहले वो फियर को भेजती है। कंस किसको भेजता है? चाणूर और मुष्टिक को, जाओ पहले तुम जरा इनको भयभीत करो, ये पता नहीं कि भय भंजन वहां पर खड़े हुए। तो पहले वो भय को भेजता है। अगर आप भय की चपेट में आ जाते हैं तो अब वो पास में खड़ी हुई है, कहती अच्छा इसको पकड़ लिया तुमने, पाश जो कहते हैं ना, यम का पाश बंद किया बंदा, फियर में भय में लपेट लिया गया है। तो अब वो मृत्यु कहती है अब मैं आ रही हूं चलो, कहते हाँ मैं तो डरी हुई चल। माने फियर के बारे में कहा है, फियर इज द ग्रेटेस्ट इम्प्योरिटी। देखिए हम लोग किन किन चीजों को इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी बोलते रहते हैं। खाना आपने बाहर खा लिया तो इम्प्योरिटी हो गई, कपड़े आपने दूसरे रंग के पहन लिए तो इम्प्योरिटी हो गई। द ग्रेटेस्ट इम्प्योरिटी इज फियर। तो वहां पे वो भय का वातावरण देखिए। एन ऑफुल हश हैड फॉलन अपॉन द प्लेस, देयर वॉज नो क्राई ऑफ बर्ड्स, नो वॉइस ऑफ बीस्ट। क्योंकि वो अनुभव करते हैं, इसीलिए जब हम छोटे थे तो ये कहा जाता था कि कुत्ते रोने लगते हैं, सियार रोने लगते हैं, बिल्लियां रोने लगती हैं। तो मैंने इसमें साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन भी किया, ये सच में ऐसा होता है, कभी कुत्ता रोता है तो कहते थे। अब देखिए सुपरस्टिशन कैसे डेवलप होते हैं। अब इसके पीछे सत्य क्या है? सत्य केवल इतना है कि पशुओं को ये उपस्थितियां जल्दी महसूस होती हैं। कैट्स आर वेरी सेंसिटिव टू वाइटल फोर्सेस। अब ये एक सत्य है। लेकिन आप जब उसका नियम बना देते हो कि कुत्ता रो रहा है, अब वो बेचारे को पीड़ा हो रही होगी तो रो रहा है तो मेरा तो ऑब्जर्वेशन ये था, तो मैंने तो बड़े साइंटिफिकली डिक्लेयर किया ऐसा कुछ नहीं होता है कुत्ते के रोने से। कहा नहीं नहीं, जिसका नाम लेते, मैंने कहा मैं तो अपना नाम ले रहा था जानबूझ के। उस समय वैज्ञानिक मानना कि मैं अपने ही नाम ले रहा था कि देखें कुत्ता रो रहा है, अभी मैं अपना नाम लेता हूँ, कुछ होता है कि नहीं होता है। तो अब उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई और अगर तुम्हें बुलाता। मैंने कहा ये तो भाई जबरदस्ती की बात है। एक्चुअली अब रात को कुत्ते ठंड में रोते हैं रोते हैं, फैक्ट है ये। तो अब कभी कभी वो बेचारे ऐसे ही रोते हैं, कभी कभी बहुत सारी चीजें हैं वो महसूस करते हैं वातावरण में, हर तरह की फोर्सेस, तो रोते हैं। पर ये नियम बना देना वो सुपरस्टिशन बन जाता है। कुत्ता रो रहा है तो नाम मत लो किसी का। हमारे घर में ये बताया गया था, नाम मत लेना किसी का, क्योंकि उस समय नाम लोगे तो यमराज आ जाते हैं, वो घूम रहे हैं वहां तक लोकेलिटी में। तो आपने नाम लिया तो वो कहते हैं अरे वाह इसी का नाम, वो उनके एक कॉइन फेंका होता है, जिसका नाम लिया वो उसी को पकड़ करके ले जाते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। लेकिन बीस्ट अनुभव करते हैं तो वहां एक चिल साइलेंस आ जाता है। ये एक आप देखिए, आप पहली चीज जो मैंने नोटिस की थी, एक चीज जो अमेरिका गया था, सब बड़ा सुंदर है, मटेरियल ब्यूटी है, फिर मैंने कहा चिड़िया कोई चहचहाती क्यों नहीं है? हाँ वो पता है, तो मैंने पूछा कि चिड़िया यहाँ चहचहाती क्यों नहीं है? नहीं, उनको मार दिया गया है। क्यों? कई कारण बताए जो भी। आप भारतवर्ष में हम लोग को आदत है कुत्ते का भौंकना, बिल्ली का म्याऊं, चिड़िया का चहचहाना, मनुष्यों की आवाजें, दूध वाला मजा आता है ना, वार्मथ, जीवन आपके पास हर एक सेंस से अंदर आता है। स्मेल्स, घर में कोई इडली बन रही है, फूल है, आपको ये सब, कोई भजन गा रहा है, ये होता है ना भारतवर्ष में, जब आप उठते हैं तो पूरी इंद्रियों के साथ जगते हैं। हाँ पर एक अलार्म बज रहा है, आपने उसको बंद कर दिया उठ के, कोई आपको दूध देने वाला नहीं है, आप खुद जाइए गरम करिए इसका अनुभव हुआ था नाम नहीं लूंगा, कहीं गया अमेरिका में, रात तो पहुंचा, 2 बजे कैसे पहुंचा वो एक अलग बात है। और जब पहुंचा तो मिल गए, उन्होंने कहा सुबह हम लोग तो ये व्यस्त रहते हैं, किचन में ब्रेड रखिए, वो जो कुछ है वहां पर है मुझे कुछ पता नहीं है ब्रेड कहाँ कैसे गरम करना है, किस चीज में लाना है। अब होता है ना, आपकी ओरिएंटेशन अलग होती है वहां पे, कैसे ब्रेड। तो मैंने कहा ब्रेड मिल जाए, तो देखा मैंने ब्रेड खोसे बनाना मिल गया, तो मैंने कहा बस हमारी तो भूख खत्म हो गई। तो बनाना वनाना खा के हम बैठ गए, फिर वो अपना घूम फिर के आए तो कहा सो हाउ वाज द ब्रेकफास्ट, मैंने कहा आई हैड बनाना, तो चाय चलो, यू डिडंट हैव टी, मैंने कहा टी तो बहुत दूर की बात है, हमसे ब्रेड ही नहीं मिली। तो ये होता है ना, एक ओरिएंटेशन होता है लाइफ का। तो ये फोर्सेस जब आती हैं तो वातावरण में उनके एक अलग एटमॉस्फेयर होता है, एक चिल एटमॉस्फेयर होता है। तो वो चिल एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब करते हैं, यानी ये सारी चीज़ों के प्रति हमको सचेत होना है कि एक एक जगह का वातावरण कैसा, हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर की, वेंटिलेटर जहाँ चल रहे होते हैं, पता नहीं, आई थिंक यू हैव हैड द एक्सपीरियंस कि वेंटिलेटर जब जहाँ पे लोग कहते हैं ना वेंटिलेटर बेड वेंटिलेटर बेड, आप एक बार जा करके देख लो, आप दोबारा जिंदगी में कब बोलोगे मैं घर में रह के चला जाऊँगा देन गो टू एन वेंटिलेटर बेड। वो जो आवाज़ें होती हैं जो जिस तरह की ना मशीन की, आपको लगता है जिंदगी उसमें कैद हो गई है, एक राक्षस के हाथ में है, वो जब चाहे आपका गला घोंट देगा। द होल एटमोसफियर इज सो हॉरीफाइंग विद ऑल दैट स्मेल, हॉस्पिटल की एक स्मेल होती है ना, आप जाती आपको लगता है बीमार हो गए आप जब तो ये वातावरण का एक असर। तो यहाँ उसका वर्णन कर रहे हैं कि देर वॉज नो क्राई ऑफ बर्ड्स, द वॉइस ऑफ बीस्ट, ए टेरर एंड एन एंग्विश फिल द वर्ल्ड एज इफ एनिहिलेशंस मिस्ट्री हैड टेकन ए सेंसिबल फॉर्म। और इस प्रकार से अंत में वो श्री अरविंद बताते हैं डेथ क्या है, द वर्डलेस मीनिंग ऑफ इट्स डीप रिगार्ड रिजेक्टिंग विद काम डिस्डेन नेचर्स डिलाइट। जब आप अवसाद की ओर जा रहे हो ना, तो माता जी बताती हैं पेसिमिज्म एंड डिस्पेयर आर द टेल ऑफ द डेविल। जब वो भय से आपको नहीं मार पाता तो अवसाद लाता है, डिप्रेशन, दैट्स वन बी। तो ये सब उसके अस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र हैं जो आप देखते हो नागपाश में बांध दिया, तो ये सारे अस्त्र हैं जिसके द्वारा तो इस प्रकार से वो अटैक करता है। लुकड आउट ऑन ऑल फ्रॉम फॉर्मिडेबल आईज कंटेमिंग ऑल विद इट्स अनबेरेबल गेज इट सॉ इन इट्स इमेंस डिस्ट्रॉइंग थॉट ऑल थिंग्स एंड बीइंग्स एज ए पिटीफुल ड्रीम। हम लोग तो यही सुनते आए कि संसार एक स्वप्न है। दो प्रकार से आप इसको कह सकते हैं, स्वप्न सत्य है, स्वप्न है जो सत्य की तरफ जा रहा है। एक तो स्वप्न वो होता है जो आप रियलाइज करते हो, दूसरा जब आप कहते हो कि ये तो सब सपना है तो मृत्यु बोल रही है। देखिए डिफरेंस, मृत्यु इको कर रही है उसी चीज को। मृत्यु क्या है? इको। अब इको में आपने देखा होगा पहाड़ों के बीच में आपने इको कही होगी ना, तो आप देखें कि वो इको क्या होती है, एक हल्का सा वर्ड ट्विस्ट हो जाता है साउंड। आपने कहा राम तो वहां से आवाज आम 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 ऐसे आती है, आपको लग रहा है कि वो इको हो रही है, इको नहीं हो रही है, उसने जरा सा डिस्टॉर्ट कर दिया। तो ये जो डार्कनेस है, जो असुर है, वो सत्य को ही पकड़ता है, उसको हल्का सा ट्विस्ट करता है, और ट्विस्ट करके वो अब वो क्या कह रहा है, पिटिएबल नाइटमेयर, ये क्या है, मनुष्य इसमें जी रहे हैं, चल मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें शांति दूंगा, इस प्रकार से। और इसी में फंस के कुछ लोग उलझ के अल्टीमेटली आत्महनन का प्रयास करते हैं। एंड लाइफ दैट वुड बी फॉर एवर बट नेवर वाज एंड इट्स ब्रीफ एंड रेन रेकरेंस विदाउट सीज एज इफ फ्रॉम साइलेंस विदाउट फॉर्म और नेम द शैडो ऑफ ए रिमोट अनकेयरिंग गॉड। अब शेरविन देखिए, Who is he? He's a god. ये भी बात है, देवता है। उसको क्या काम दिया गया है? उसको गंदगी साफ करने का काम दिया गया है। उसका काम है कि घर जाके तोड़ दो, बाद में विश्वकर्मा जाएंगे बनाएंगे। क्यों तोड़ दो? जो भी चीज, उसको धर्मराज कहते हैं ना मृत्यु को, धर्म, धर्मराज का मतलब क्या है, वो तुला एक दिखाते हैं, तुला पर ढूंढता है, क्या देखता है? अच्छा बुरा नहीं देखता है, ये तो हम लोग ने उसको बना दिया। वो केवल इतना देखता है, वो कहता है दो लाइन में आ जाओ, तुम्हारे सारे कर्म भाव सबको, जो जो सत्य से जुड़ा था वो एक तरफ आ जाओ, उसको टच नहीं कर सकता है। जो जो सत्य से नहीं जुड़ा था एक प्रहार में विध्वंस। वो हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे ना श्री अरविंद का, जो सत्य से जुड़ा है उसका कभी विनाश नहीं हो सकता, प्रलय महाप्रलय में भी नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य का अर्थ ही यही है। और जो पहला सत्य हमारे अंदर है वो चैत्य सत्ता का अर्थ, वो वाला सत्य नहीं कि जमीन तो मेरी थी, वो तो मेरी जमीन तुम्हारी जमीन बराबर का फॉल्सुड है। वो सत्य जो चैत्य के साथ जुड़ा है, जो आपकी अंतरात्मा के साथ जुड़ा है, जो भी कर्म आपने अपनी अंतरात्मा से जुड़ के किया है, कैसा भी कर्म हो जो बाहर से दिख रहा हो, लेकिन वो सत्य है, उसका कभी विनाश नहीं होगा। और जो कुछ हमने ऐसे ही, दुनिया तो ऐसी फॉल्सहुड मिथ्यात्व, बाहर से नमस्ते जी कैसे हैं, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, है ना, दुनिया तो यही दुनियादारी, अंदर में कह रहे हैं क्यों आ गए, इसी समय आना था, तो ये जो चीज है वो उसका विनाश कर देती है, हिपोक्रेसी, फॉल्सहुड. तो द शैडो ऑफ ए रिमोट अनकेयरिंग गॉड डोम टू हिज नॉट द इल्यूजरी यूनिवर्स कैंसलिंग इट्स शो ऑफ आइडिया एंड एक्ट इन टाइम एंड इट्स इमिटेशन ऑफ इटर्निटी. She knew that visible death was standing there and Satyavan had passed from her embrace. तो ये वर्णन है, हम लोग यहीं रुकेंगे. इसके पहले वो सब है कि वो मृत्यु कहती है कि तुम्हारे तुम लूजन करो अपनी ग्रास्प को, तुम्हारा जो जिसको प्रेम करती है वो सफर कर रहा है. तो मोमेंट ऑफ डेथ पे इसमें जो कैंटो में कई चीजें हैं पर एक आध चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मृत्यु का क्षण बहुत इंपॉर्टेंट है. गीता भी इसकी बात करती है. तो श्री अरविंद से किसी ने कहा तब तो बहुत अच्छा है, हम मृत्यु के समय पर याद कर लें. तो पुराने समय में लोग बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखते थे, तो बुलाएंगे बच्चे को. और भजन भी एक तरह का कि अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, मगर मौत की जब घड़ी उसके आई तो बेटे नारायण को थी रट लगाई. तुरंत खुल गए उसके वैकुंठ द्वारे, हरे नाथ गोविंद. ये है ना, ये सुना, ये भजन नहीं सुना है ना, कि अजामिल नाम का एक कसाई है, पूरी जिंदगी उसने मारा पीटी की है. अब पता नहीं अजामिल, अब लगता था मुस्लिम नेम है, लेकिन उस समय तो मुस्लिम थे नहीं, लेकिन बेटे का नाम उसने नारायण रख दिया. अब मर रहा था तो उसने बेटे बेटे बेटा को बोले नारायण नारायण. अब बेटा आया लेकिन नारायण भी आ गए, मेरा नाम ले रहा है, तो भगवान प्रकट हो गए, तो वैकुंठ चला गया. तो किसी ने, अब ये सब चीजें, ये एक ऐसे नहीं होता है, इतना सिंपल. शेरविंद से किसी ने पूछा तो शेरविंद कहते हैं इट इज नॉट लाइक ए लास्ट मिनट रेट्रीब्यूशन की तुमने जिंदगी में जैसे भी जिए लास्ट मिनट तुमने कह दिया भगवान का नाम. और शेरविंद कहते हैं कि तुम नहीं कह सकते हो. गरुड़ पुराण जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इस चीज को, उसमें जो वर्णन है ना भय जो मृत्यु का, कि धरती नीचे हो जाती है आकाश पर, नहीं धरती तो नीचे ही होती है सॉरी, धरती ऊपर हो जाती है आकाश नहीं, सब डिसोरिएंटेशन हो जाता है. उस समय आपको भगवान नहीं याद आते हैं, उस समय तो कहां स्थिर हो जाऊं, तो किसको याद आएंगे भगवान, जिसने पूरे जीवन माँ 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 करके जिया है. तो उसके लिए बहुत सरल है, जिसने जीवन में सुख में दुख में हर अवस्था में माँ 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 यही कहना सीखा, तो उसको जब मृत्यु की घड़ी भी आती है माँ. लेकिन अगर आपने माने किसी ने भी अगर ऐसे जीवन नहीं जिया है, सारे जीवन माँ की जगह मैं करता रहा, तो मृत्यु के समय भी वो कहेगा मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो, मेरी वसीयत, मेरी फजीयत, सब कह देगा. जिंदगी में वो मैं ही करता रहा. तो मृत्यु का क्षण देखिए सत्यवान क्या कहता है, सत्यवान को कोई याद नहीं आता उस समय, सत्यवान को वो याद आते हैं जिससे वो कर्तव्य से नहीं प्रेम से बंधा है, कर्तव्य से वो अपने माता पिता से बंधा है. लेकिन जो प्रेम, गहन प्रेम का जो बंधन है, इसमें ये भी हिंट है, क्योंकि अदरवाइज लोग कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छा है भाई, सत्यवान की तो विवाह ही सावित्री से हुआ था तो नेचुरल था. बात इसकी नहीं है, बात यह कि सत्यवान ने जिस तरह से सावित्री को प्रेम किया, वो आप पीछे जाके जब देखते हैं हम लोग बुक 5 में, तो सत्यवान क्या कहते हैं सावित्री को देख के, आई सी द वर्ल्ड मदर इन यू. ये केवल एक लिखने की का तरीका नहीं है. अब पुराने समय में ये चीज हमारे कल्चर में चली गई थी, घर में वो आई लक्ष्मी देवी आई हैं. जब आप जीवन को इस तरह से देखना शुरू करते हो, स्वामी विवेकानंद ने कहा ना ट्रीट ऑल विमेन एज देवी, दैट इज द अल्टीमेट तंत्र. शेरविंद कहते हैं येस देर इज ए ट्रूथ इन इट, क्योंकि वो तंत्र सार में लिखा है, पर कहते हैं ट्रीट एवरीबडी एज गॉड्स. तब जब आप इस भाव से जीवन से जुड़ते हो, कम से कम सत्यवान ने सावित्री के साथ इस भाव से जुड़ गया था कि यू आर द वर्ल्ड मदर, और इस भाव से वो जुड़ता है उस प्रेम के साथ जब वो सावित्री को बुलाता है, तो ऑलवेज इन हिज माइंड सावित्री इज ए गॉडेस. तभी तो कहते हैं मुझे बचा लो. उस समय सत्यवान कोई ये नहीं कहते हैं कि अच्छा सावित्री हमारा हो गया समय, ओम, ऐसे नहीं करते हैं. ये सब जो हम लोगों ने अभी शुरू कर दिया ना, एक बड़ा निराकार टाइप का एक लुक एट द ब्यूटी, नहीं लुक एट द परफेक्शन ऑफ द होल थिंग, कि जीवन के बीच में ही हम उस स्वर को ढूंढ सकते हैं, अलग होके नहीं. अभी इस तरह से बैठ करके इस मुद्रा में आपके अंदर जो शुद्ध प्रेम है जिसके साथ वो जुड़ा है, और सावित्री अब ऑफकोर्स हम लोगों के लिए माँ हैं, पर एक कितना विशाल लैंडस्केप है। तो मृत्यु का क्षण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस समय जो हमारी चेतना है गहन भूत होती है और घनीभूत होती है, और उस समय वो इतनी कंसेंट्रेट होती है उस मोमेंट पे कि अगर आप चाहें तो पूरी कॉन्शियसनेस को प्रोजेक्ट कर सकते हैं इन ए स्टेट ऑफ कॉन्शियस, इन ए स्टेट पूरी कॉन्शियसनेस को, बिकॉज वो कंसेंट्रेटेड हो गई है। देखा है जब दर्द होता है तो क्या होता है, पूरी कॉन्शियसनेस आपकी एक जगह कंसेंट्रेट हो जाती है। तो बिकॉज द कॉन्शियसनेस एंटायर कॉन्शियसनेस इज कंसेंट्रेटेड, उस समय हम जिसके बारे में सोचते हैं हम उधर चले जाते हैं। धन के बारे में सोचते हैं सारी जिंदगी, धन धन, तो उसके बाद आ जाता है धन धना धन, सांप के वहां ढूंढोगे आप कहां, बैंक में जाकर के लॉकर के अंदर, क्योंकि आप धन पूरे जीवन ये करते रहे। तो उस प्रकार से जब जीवन जीते हैं तो अंतिम क्षण बहुत सुंदर होता है। मृत्यु भय की चीज नहीं है, हम ये कहें कि भय ही मृत्यु है। मृत्यु भय भय की चीज नहीं है। अगर भारतवर्ष में देखें तो मृत्यु क्या है, आप मटकी फूटी ना, जो बीइंग है वो तो आपकी कार ही टूटी ना। अगर कार टूट जाए या स्कूटर टूट जाए, साइकिल टूट जाए, तो आप क्या कहते हो, अरे तेरा तो महाविनाश हो गया, ऐसे थोड़ी कहते हो। कहते चल तेरा नुकसान हुआ लेकिन आ जाएगी दूसरी, थोड़ा पैसे और जमा कर लेना, यही कहते हैं ना। शेरिंदिक जी कहते हैं आई हैव ऑलरेडी पेड द मनी फॉर द न्यू ड्रेस एंड बेटर ड्रेस, ईशावास उपनिषद में, कि तुम मुझे मारोगे, एक वो मतलब ब्रिटिश साम्राज्य को कह रहे हैं तुम मुझे मारोगे, तुम क्या समझते हो मैं ये कॉर्पस्कुल्स हूँ, एनिमल क्यूल्स हूँ, तुम मुझे मारने का साहस करते हो, मुझे जज करने का साहस करते हो, तुम मुझे नहीं मार सकते। फिर आगे लिखते हैं, हाँ शायद तुम मेरे शरीर को, जो वस्त्र रूपी शरीर है इसको फाड़ डालोगे, मुझे हैंग कर दोगे, ये सब वो लिखते हैं, लेकिन ये तो वस्त्र है, मैं तो नया वस्त्र लेके आऊंगा और सुंदर वस्त्र लेके आऊंगा। और उसके बाद लिखते हैं क्या ऑलरेडी मैंने मर्चेंट को उसका मूल्य चुकाने ही दिया है। जब आपने एक सुंदर जीवन जिया है, जगत कल्याण के लिए जिया है, फॉरगेट अबाउट इवन डिवाइन, तो अब क्या चिंता है, भगवान आपको और सुंदर वस्त्र देके भेजेंगे, समस्या क्या है। मृत्यु से भय कैसा है, किस बात का भय है, जो अंत नहीं, भय हमारी सीमित पर्सनालिटी का भय। तो और बेटर पर्सनालिटी होके आएगी ना। श्री अरविंद ये नहीं कहते हैं कि मृत्यु के बाद आप और नीचे जाओगे, नहीं, अनलेस आपने बहुत ही कुकृत्य वाला जीवन जिया है वो अलग बात है, उसमें भी रेट्रोग्रेशन केवल गीता पासिंगली मेंशन करती है। श्री अरविंद से पूछा गया था, गीता तो रेट्रोग्रेशन की बात करती है, आसुरी की उन्हें अधम गति, तो कहते हैं हाँ बट वो भी एक अप स्विंग लाने के लिए, बट अदरवाइज हम प्रोग्रेस करते जाते हैं। तो फिर समस्या क्या है, आप बोलोगे कि नहीं पर ये लोग, आप तो भूल जाओगे 10 दिन बाद, उन लोगों की प्रॉब्लम है जो रहेंगे, जो जा रहा है उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो फ्यू डेज की बात है, भूल जाएगा वो, फिर कहाँ जाएगा। मुझे बेखुदी कि तूने बड़ी चाशनी चटाई, भगवान की गोद में जाएगा, शहद पिलाएंगे आपको, सुला देंगे थोड़ी देर, फिर आप जागोगे, वहां कौन से माता पिता हस्बैंड वाइफ बच्चे, आप बोलोगे कहिए सर क्या करें हम, माँ पिता कहेंगे जा वहाँ, अच्छा वहाँ आप जाओगे, नया एडवेंचर, इसमें भय की क्या बात है। कम से कम एक भारतवर्ष में जहाँ गीता का इतना प्रचलन है, जहाँ पुनर्जन्म को हम मानते हैं, और माँ श्री अरविंद के अनुयायी, मृत्यु का भय इज रियली बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, समझ नहीं आता है ये कौन सा पाश है, जादू है, काला जादू, कि मृत्यु से हम भयभीत होते हैं। मृत्यु भय की चीज नहीं है, मृत्यु विजय करनी है वो एक अलग बात है। इसलिए नहीं कि हम डरते हैं मृत्यु से, माता जी ये बताती हैं कि मृत्यु पर से ना हमें डरना चाहिए ना हमें मृत्यु की कामना करनी चाहिए। और फिर माँ कहती हैं मृत्यु पर विजय हमारा लक्ष्य है, लेकिन यदि पैराडॉक्स ये है कि यदि आप मृत्यु से डरते हैं तो आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते, वो पहले ही डिस्क्वालीफायर हो गया। तो अब आगे की यात्रा सावित्री की मृत्यु पर विजय के अभियान की है, और वो केवल कोई व्यक्तिगत उससे नहीं कि अरे बच जाए मेरा सत्यवान ये पर्पस नहीं है। मृत्यु पर विजय का अर्थ है उन सभी शक्तियों पर विजय जो अचित अंधकार की शक्तियां हैं, जिन्होंने जड़ तत्व को अपने पाश में बांध रखा है। फिजिकल बॉडी वो लास्ट फोर्ट्रेस है अंधकार की शक्तियों का, इसलिए मृत्यु पर विजय आवश्यक है, क्योंकि हर कोने से चेज आउट हो जानी चाहिए अंधकार। बट फिजिकल बॉडी इज द लास्ट फोर्ट्रेस ऑफ डार्कनेस। नमस्ते।